الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آج ہم انشاءاللہ فوڈ پوائزننگ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں گرمی کی وجہ سے ایک اور بیماری جس کو ٹائفائڈ کا بخار یا ٹائفائڈ کی بیماری جس کو کہتے ہیں انشاءاللہ سوچل اس پہ آج ہم بات کریں گے اور کچھ فروٹس کے اوپر بھی بات کریں گے جو گرمی میں اللہ عزوجل نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں ان سے ہمیں کیا کیا طبی فوائد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈائریا جو ہو جاتا ہے عمومی طور پہ وہ آلودہ پانی آلودہ غذا اس قسم کی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا آسان حل جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو بھی غذا استعمال کریں صاف ستھری اور صفائی کے جو بیسک اصول ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے تیار کریں اور اس کو استعمال کریں اسی طرح پانی کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اب پانی کے احتیاط کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانی اور غذا کے ساتھ ساتھ ایک بیماری اور بڑی شدت کے ساتھ گرمی کے موسم میں پھیلتی ہے جس کو ہم ٹائفائڈ کہتے ہیں ٹائفائڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے ٹائفائڈ ایک بخار کی علامت ہوتی ہے پیٹ کی بیماری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے بخار کی شدت آتی ہے اور جسم نڈھال ہو جاتا ہے
ڈاکٹر صاحب عموماً جو ہے کہ دوسری بیماریاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی بخار آ جاتا ہے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے غلط کھانا کھا لیں خراب قسم کا کھانا کھا لیں اس میں بھی پیٹ خراب ہوتا ہے بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ویسے نارمل انفیکشن ہوا ہوا ہے یا ٹائفائڈ ہوا ہوا ہے
دیکھیں ٹائفائڈ بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک جراثیم ہوتا ہے جس کا نام ہے سالمونیلا ٹائفائڈ
صحیح
اس سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بات کرتے چلیں گے ٹائفائڈ جو ہے ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا کے اندر 80% اس کے جو مریض ہیں
جی
وہ بر اعظم ایشیا میں ملتے ہیں
اچھا
جس میں آپ کی کنٹری بھی شامل ہے جس میں پڑوس کے ملک بھی شامل ہیں اس میں دوسری کنٹریز بھی جو ایشیا کے کنٹریز ہیں اس کے اندر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کنٹریز میں ہی یہ ٹائفائڈ کی ریزن وجہ کیا ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ پھر وہی آتی ہے کہ ان ہائیجینک کنڈیشنز
اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ ٹائفائڈ جو اسپریڈ ہوتا ہے جو پھیل جاتا ہے کنٹامینیشن ہوتی ہے یہ جو سیویج کا پانی ہوتا ہے اور جو استعمال کا پانی یعنی پینے کا پانی جب یہ لائن مکس ہوتی ہے یا گندا پانی صاف پانی میں مل جاتا ہے اس کے اندر پہ یہ جراثیم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر گھر گھر جس طرح سے پانی جاتا ہے اسی طرح بیماری بھی پھیل جاتی ہے
بالکل اس میں دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم عمومی طور پہ جو ہے جو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ زیادہ تر ہم اپنے آپ کو ہی ٹھہراتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا لیکن اس میں اگر 70% ہماری 70% ہماری اگر کہیں مسٹیکس ہوتی ہیں 30% جو ہے نا دوسری مسٹیکس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کی سیوریج کی لائن چل رہی ہوتی ہے ایسی میں آپ کا ایک عام آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے اب وہ سیوریج کی لائن جو ہے انفارچونیٹلی آپ کے جو بھی پانی کی لائن ہوتی ہے اس سے اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہوتا اگر 6 یا 7 فٹ کی فاصلے پہ ہوتی ہے وہ ذرا سی بھی سیپیج ہو جاتی ہے ذرا سی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ پینے کے پانی میں آ کے ملنا شروع ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے अब इसमें अगर हम स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं तो पाकिस्तान में कमोबेश हर साल
सही
1 लाख से ज्यादा लोग जो है ना टाइफाइड का शिकार बन जाते हैं, जबकि और उसमें तकरीबन 1000 के करीब जो लोग हैं
सही है
उम्मीद तौर पे इंतकाल भी फरमा जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम दुनिया का रेशो निकालें तो वो रेशो इससे बहुत कम मिलता है।
यानी ये इस तरह की बीमारी है जो एहतियातों के जरिए
बिल्कुल क्योरेबल है, मतलब आप इससे आराम से
इलाज हो सकते हैं,
बिल्कुल इलाज भी हो सकता है, आराम से बच भी सकते हैं इससे। कोई इतना बड़ा देखे बात वही होती है कि हर चीज के लिए हमने बात की सफाई के जो बेसिक उसूल है
सही
हम उसको अगर अपना ले तो मेरे ख्याल में इन बीमारियों से आराम से बच सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। और सफाई के बेसिक उसूल के लिए कोई बहुत बड़ी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पे अमल करते हुए जो उनके एक उसूल हुआ करते थे, हम सिर्फ उनको ही मद्देनजर रख के अगर हम उनको ही अपना लें
सही
तो आप इस बीमारी से इजीली बच सकते हैं। देखिए क्या था
उन उसूलों में, जैसे क्या कौन कौन से
सबसे 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 पहला उसूल तो ये है कि जो भी गिजा आप इस्तेमाल करें अपने हाथ धो के अच्छी तरीके से हाथ धो के इस्तेमाल करें। लेकिन उस जमाने में साबुन वगैरह तो हुआ नहीं करता था, अब उस जमाने के अंदर जो है ना हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लिया करते थे, धो लिया करते थे। आजकल क्या होता है हाथ को धोया नहीं जाता, हाथ को गीला कर लिया जाता है।
सही,
गीला करना और धोने में दोनों में बहुत फर्क होता है।
तो डॉक्टर साहब इसमें जो खाना खा रहे होते हैं खाने से पहले की जो सुन्नत है आदाब है इनको ये अगर पूरी करी जाए तो इससे कैसा फायदा?
बहुत फायदा होता है, उससे भी बहुत फायदा होता है आपको। देखिए आप खाने से पहले की जो सुन्नतें आदाब हैं वो यही है कि आप खाने से पहले खाने का वजू फरमा लें।
सही,
ठीक है ना। खाने का वजू से मतलब है कि वही हाथ वगैरह धो लें
और हाथ धोने के बाद हाथ खुश करें या वैसे ही खाना खाएं।
देखिए अगर फी जमाना देखा जाए तो हाथ खुश ना करें तो अच्छी बात है। उसकी रीजन ये है कि आप कोई चादर या किसी तौलिया वगैरह से अगर हाथ खुश करते हैं तो चांसेस यही है कि वो तौलिया तो साफ तो नहीं होगा, उसमें भी यकीनन लाखों करोड़ों जरासीम मौजूद होंगे, या चादर होगी उसमें भी लाखों करोड़ों जरासीम मौजूद हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हाथ को खुश्क ना करें, वो चंद सेकंडों में 10 से 15 सेकंड के अंदर हाथ ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाता है। खाना खाने के बाद जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं अपने इस्तेमाल में हम जो इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद का वजू कर लेना चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप अगर खाना खाते हैं खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, ठीक है ना। अब हाथ पे लगी हुई आपके चिकनाहट वगैरह
सही
या कोई भी मटेरियल वगैरह लगा हुआ उसी कंडीशन में आप सो जाते हैं
सही।
अब जब रात अंधेरा हो जाता है तो उमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि क्लिनिक्स के अंदर पेशेंट रात को चूहे ने काट लिया
सही,
रात को कोई चीज काट के चले गई
सही,
आपको पता नहीं चलता। अब अंधेरे में आपको पता है कि किसी चीज को अगर लाइट ऑफ कर देते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो हशरातुल अर्ज है वो जमीन से निकलना शुरू हो जाते हैं, आपके कॉकरोचेज वगैरह हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, चूहे वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, वो आपके उसकी स्मेल के साथ अट्रैक्ट होते हैं, आपके हाथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
जो भी खाना खाया हुआ होगा वो हाथ पे लगा हुआ
उसके ऊपर हाथ पे लगा हुआ होगा उसकी स्मेल आ रही होगी। आप उस हाथ ना धोने की वजह से भी उसके प्रॉब्लम हो सकती है, अगर खुदा ना खास्ता अगर उसकी वजह से एक वो जो रेड बाइट जो होती है आपको चूहे ने काट लिया जो बीमारी होती है खुदा ना खास्ता वो हो जाए।
टाइफाइड की ऐसी कौन कौन सी अलामतें हैं जो कि नॉर्मल बीमारियों से हटके हों, वो पाए जाए तो मदनी चैनल के नाज़रीन फौरी तौर पर तवज्जो लें। इसका एक टेस्ट भी होता है वो करवा के कंफर्मेशन हो जाती है, उस टेस्ट के बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाता है।
टाइफाइड की जो निशानियां होती है ना वो तो बेसिकली कमोबेश दूसरे बुखारों से मिलती जुलती होती
सही है।
इनिशियली शुरू में बुखार जो थोड़ा सा हल्का होता है फिर आस्ते आस्ते वो तेज हो जाता है, 103 104 डिग्री पे चले जाता है, भूख भी गिर जाती है, कमी हो जाती है, जिस्म में दर्द होने लग जाता है, पेट में दर्द की शिकायत होने लग जाती है, लागरपन आ जाता है।
जैसे अगर नॉर्मल फूड प्वाइजनिंग हो और टाइफाइड अगर हो तो उसमें जो नॉर्मल फूड प्वाइजनिंग में बुखार इतनी शिद्दत का नहीं होगा जितना कि ये टाइफाइड के अंदर होगा।
बिल्कुल, लेकिन आप अगर उसको मलेरिया से कंपैरिजन करते हैं
सही है
तो फिर वही शिद्दत,
लेकिन मलेरिया में पेट में दर्द इतना नहीं आता।
नहीं आता लेकिन आता है कभी कभी आता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो डिफ्रेंसिएशन आती है ना जो आप इससे कर सकते हैं डिफरेंस कर सकते हैं वो तो एक डॉक्टर जो है ना वो करेगा,
वो बेहतर तौर पर डॉक्टर ही करेगा।
लेकिन घर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अलामत आती है ना जबान जो है
सही
उस पर कोटिंग आ जाती है, यानी कि सफेद रंग की कोटिंग सी लेयर सी बन जाती है जबान के ऊपर,
बोलते थे
थ्रश कह लें आप, कोटिंग कह लें, कोटेड टंग हम अपनी जबान में कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, वो आ जाती है उसके ऊपर, उससे आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा अगर आप हार्ट रेट देखते हैं पल्स वगैरह देखते हैं टेक्निक क्लिनिकली तौर पे तो वो जो है ना रिलेटिवली ब्रेडी कार्डिया, यानी कि जो आम बुखार के अंदर हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है
सही है,
किसी भी बुखार के अंदर हार्ट रेट ज्यादा होता है, लेकिन टाइफाइड वाइज बुखार ऐसा है जिसमें हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना, तो वो रिलेटिवली ब्रेडीकार्डियो होता है। अगर ये क्लिनिकल साइन डॉक्टर को मिलती है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइफाइड के ऊपर चले जाते हैं, डायग्नोस पक्का हो जाता है। बहुत से अच्छे जो डॉक्टर होते हैं उनको शायद जरूरत भी नहीं पड़ती किसी टेस्ट करवाने की, वो इसको
इसका भाई की टेस्ट होता है कंफर्मेशन करा के
एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उम्मीद तौर पर वो टेस्ट करवाया भी नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग करवाते भी हैं, लेकिन ये है कि करवा लिया जाए तो अच्छा है। दूसरी ये है कि नफ्स का स्लो होना जो है ना, स्लो से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल गिर जाती है, अब ये
वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है,
खुद जो है ना नहीं करना शुरू कर दे, तो खुद से ही चेक करना शुरू कर दे, बेहतर है डॉक्टर से रुजू कर ले, डॉक्टर से मशवरा कर ले, उन पे छोड़ दे डॉक्टर।
इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर साहब इस तरह से बने कि कुछ खाया पिया खाने पीने के 12 घंटे या कमोबेश 26 घंटे के बाद पेट में दर्द हो गया, बहुत तेज बुखार चढ़ना शुरू हो गया, जुबान में भी थोड़ी फ्रेश व्हाइटनेस आ गई, इसमें रैश भी अमूमन अक्सर पड़ जाते हैं, बिल्कुल लिथार्जी यानी कमजोरी की कैफियत में आ गया। अब ये वाली पूरी प्रेजेंटेशन होगी अगर टाइफाइड के अंदर बंदा मुब्तला हुआ।
देखिए टाइफाइड में जरूरी नहीं होता है कि आज उसको जरासीम ने हमला किया तो कल उसकी अलामत सामने आ जाएगी,
सही,
ये इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसमें बात औकात ये है कि 10-10 दिन 15-15 दिन भी लग जाते हैं, तो उसके अंदर जो है डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए,
क्योंकि अमूमन होता है कि मोशन टाइफाइड, अगर मिसाल के तौर पर टाइफाइड ही हो गया, मोशन शुरू हो जाते हैं, हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है, फार्मेसिस्ट के पास जाते हैं, वहां से मोशन की दवा ले लेते हैं, फार्मेसिस्ट के पास जाके ये बुखार की दवा भी ले लेते हैं, वो अपनी तौर पे सेल्फ थेरेपी चल रही होती है, इसके बारे में आपको मंदी फूल अता फरमा दे।
सेल्फ थेरेपी तो खैर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी क्यों ना हो। हाँ, इनिशियली तौर पे हल्का फुल्का बुखार है तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वक्त नहीं मिलता है, रात का टाइम है, तो कोई भी बुखार की गोली खा के फिलहाल उस बुखार को कम किया जा सकता है, ना कि उसका इलाज किया जाए। इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से जो है ना आपका नुकसान ही होता है, फायदा कभी भी नहीं होता, पैसों का भी नुकसान होता है, सेहत का भी नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो दवा आपको मुआफिक ना हो,
सही,
हो सकता है जो दवा आप ले रहे हो वो आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो,
डोज के हिसाब से
भी बहुत बड़ा मसला ये होता है, और फिर वो उसी हिसाब से जो है ना इसमें चीजें आती हैं कि फिर वो आइंदा वो दवा उसको असर भी नहीं करती और उस पर जो है ना मसले मसाइल।
खलील भाई कुछ फरमाना चाह रहे थे इसमें,
ये भी शायद फरमा दीजिए कि अगर किसी को जैसे ये बुखार हो जाता है तो आया कि वो क्या एहतियातें करे के खाने में पीने में, कौन सी गजा उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी
इंशाल्लाह। तो उसमें खलील भाई बहुत आसान सा ये है कि जो भी आप गजा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप हल्की फुल्की गजा का इस्तेमाल करें जो आपके पेट पे मैदे पे ज्यादा असर ना करे, हैवी ना ले। जैसे बहुत ज्यादा हैवी गजा इस्तेमाल करने लगते हैं तो पता चला जी टाइफाइड का बुखार हो रहा है, लेकिन ये बिरयानी खाने शुरू कर दी आपने या कोई हैवी नान वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो इस तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी गिजा लें, हल्की गिजा लें, सॉफ्ट गिजा लें और साफ सुथरी गिजा का इस्तेमाल करें। तो इसमें उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो रोटियों के लिए मना कर देते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए। रोटी ना खाने का मकसद ये नहीं कि उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, रोटी ना खाने का मकसद ये होता है कि जब आदमी बीमार होता है या उसको बुखार होता है तो उसका जो मेदे का जो निजाम हजम है वो एक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। तो अगर आप हैवी डाइट ले रहे होते हैं ना तो उसमें उसको हजम करने में जरा डिफिकल्टी होती है तो पेट में तकलीफ बढ़ सकती है। तो इस वजह से जो भी गिजा इस्तेमाल करें उसमें हल्की गिजा का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो इसमें एहतियातें क्या करनी चाहिए, इसमें एहतियातें जो करनी चाहिए वो आपको ये करनी चाहिए कि जो पानी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उसको जो है आप अच्छी तरह बॉईल करके पिए, और या फिर उसको आप उसको बिल्कुल इतना जरासीम से पाक कर लें। जरासीम से पाक करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, सबसे आसान घरेलू तरीका तो यही होता है कि आप उसको बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के लिए कि कम से कम ये है कि 15 मिनट तक उसको बॉईल कर लेना।
डॉक्टर साहब ये जो आप तरीका बता रहे हैं बीमारी से बचने का, ये सिर्फ टाइफाइड के लिए या जुमला दीगर जो पानी के जरिए बीमारी फैल जाती है या होती है जरासीम होते हैं उनके लिए भी है?
नहीं, ये तकरीबन तमाम बीमारियों में, वैसे भी एक रूटीन भी होना चाहिए, हम अपने माहौल की बात करते हैं, जो हमारी कंट्री का माहौल है उसकी बात करते हैं, तो उसके अंदर कोशिश करेंगे पानी जो है ना आप, क्योंकि हमारे यहाँ जो 70% आबादी में पानी इतना साफ नहीं मिलता है, तो अगर पानी को आप बॉइल करके इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। खाली टाइफाइड नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं इसके अंदर, आप हेपेटाइटिस की बीमारियां इनसे भी आपका बचत हो सकती है।
इसमें डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था पानी को हम बॉइल करें कमोबेश 12 से 15 मिनट तक पानी को बॉइल होने के पहला उबाल आने के बाद इसको बॉइल होने दें, 100+ इसका टेम्परेचर जाने दें, 15 मिनट इसको बॉइलिंग होने के बाद फिर इसको ठंडा होने दें।
ठंडा
अमूमन ये होता है कि बॉइल करने हमने रखा, एक उबाला आ जाता तो उसके बाद उसको समझते हैं गर्म हो गया, क्या इसमें जरासीम मर जाते हैं?
देखिए जरासीम आप अच्छी तरीके से उसको बॉइल करना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड टाइम है
वो 10 से 15 मिनट
का स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें बॉइल करना चाहिए। अब होता क्या है कि फुल आपने चूल्हा जला दिया उसको, एक उबाल आ गया, उबाल 1 से 1.5 मिनट के अंदर उबाल आ जाता है उसके अंदर, तो वो उम्मीद तौर पर समझते हैं कि आ गया। आप उसको हल्की आंच पे रखें ताकि उसमें अच्छी तरह से वो कर जाए। उसमें देर तक उबालने के जहाँ फायदे हैं वहाँ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं।
अच्छा जी,
उसमें नुकसान ये होता है कि जो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं या जो फायदेमंद बैक्टीरियाज होते हैं
सही,
वो भी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना उस अनहाइजेनिक पानी को पीने से जो नुकसान हो सकता है उससे आप बच जाते हैं। तो बेहतर ये है कि कोई भी गिजा आप इस्तेमाल करें वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके साफ करके धो के इस्तेमाल करके फिर खाना।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पानी अगर इस तरह का गंदा आ रहा है तो यही पानी से सब्जियां वगैरह सब्जी वाले सब्जियों पे भी डाल देते हैं, खेती बाड़ी भी हो रही होती है, तो ये अगर फिर सब्जियों पे भी तवज्जो भी देनी पड़ेगी हमें, फ्रूट होते हैं उनके ऊपर भी तवज्जो।
बिल्कुल,
अगर पानी मिक्स हो गया है तो
जब इस किस्म के मौसम होता है तो कोशिश करना चाहिए कि जो कटे हुए फ्रूट होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। जो छिलके वाले फ्रूट होते हैं उनका इस्तेमाल करें।
इसमें ये भी है कि जैसे कि घर के अंदर जो किचन है और जो बर्तन होते हैं इसका भी ठीक ठाक सफाई का इत्तमाम करना चाहिए।
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम इस चीज को उमूमी तौर पे भूल जाते हैं। होता क्या है कि अक्सर देखा गया है कि जो किचन के अंदर खासकर खाना वाना खा के प्लेटें वगैरह छोड़ दी जाती है, तो वहां पे किचन में जब आप प्लेटें छोड़ देते हैं तो उनपे चिकनाहट वगैरह लगी हुई होती है, तो वही वही काकरोचों के लिए और इस किस्म के जानवरों के लिए वो दावत हो जाती है, तो वो आके उसके ऊपर अपने जरासीम छोड़ देते हैं। और फिर जब उसको वॉश प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, गीला कर लिया जाता है, तो उसको वॉश अगर तरीके से नहीं किया जाता, धोया सही तरीके से नहीं जाता, तो फिर वही पेट के जरिए वही चीजें आपके पेट में चली जाती
है। तो मैं एक पढ़ रहा था एक चीज, तो उसमें नजर से मेरे ये गुजरा था कि जो अमूमन फ्रूट काटने के लिए, गोश्त काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए अक्सर लोग कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड के ऊपर रखे, तो उसमें रिकमेंडेड ये था सेफ्टी गाइड्स के अंदर कि सब्जी काटने का बोर्ड अलग होना चाहिए, फ्रूट काटने का बोर्ड अलग होना चाहिए, और गोश्त वगैरह अगर आप घर में काट रहे हैं मुर्गी वगैरह तो उसका भी बोर्ड अलग होना चाहिए। तो ऐसा करना कैसा है?
नहीं देखिये, बात यह है कि अब हर आदमी 3-3 बोर्ड 4-4 बोर्ड कैसे अफोर्ड करेगा, बल्कि आम आदमी घर में तो बोर्ड होता भी नहीं है,
तो इसे बोर्ड रखना चाहिए या नहीं चाहिए?
रखने में कोई मुजायका नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो एक एसेसरी आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा चीज आप लेकर आ रहे हैं, अगर रख लें तो अच्छी बात है, ना रखें तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहां पे भी वो चीज काट रहे हैं तो बेहतर है कि उसको अच्छी तरीके से साफ करके, क्योंकि किचन के अंदर फ्लेयर्स होते हैं।
सही,
हमने अपने तो जो हमारे दादा वगैरह दादी वगैरह दादियों को देखा है, तो वो किचन के अंदर एक छोटा सा बोर्ची खाना होता था, उसी के अंदर वो एक लकड़ी का उनके पास होता था, उसी पे सारी चीजें कटिंग होती थी। और अभी भी अगर चले जाएंगे आप गांव वगैरह तो इसी किस्म का सिलसिला होगा, वहां पे तो ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन अगर वहां पे जो भी चीज है उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया जाए, धो लिया जाए, तो उससे काफी हद तक फायदा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड ले लें, बोर्ड ले लें तो अच्छी बात है, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है, कोई समस्या नहीं। खलील भाई, कुछ आप इस सिलसिले में हमें
जी कुछ रूहानी इलाज है बुखार के हवाले से इंशाल्लाह वो अर्ज करता हूँ। सबसे पहले शेख तरीकत अमीर अलसुन्नत दामद बरकातहुम अलिया के रिसाले बीमार आबिद से एक जो है वो हदीस पाक अर्ज करता हूँ। शेख तरीकत अमीर अलसुन्नत फरमाते हैं, रिसाला बीमार आबिद सफहा नंबर 7 पर, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बुखार में जिस्मानी तकलीफ जरूर है मगर उखरवी फायदे बेशुमार हैं। لہذا گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو ایک رات بخار میں مبتلا ہوا اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخار کا اگرچہ علاج معالجہ کروانا ہی چاہیے مگر یہ ہے کہ یہ بہت ہی مبارک ایک طرح سے مرض ہے, اس پر اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار اس پر اجر جو ہے وہ ملتا ہے. اسی رسالے میں صفحہ نمبر 25 پر رسالہ بیمار عابد پر ٹائفائڈ ملیریا اور ہر قسم کے بخار کا روحانی علاج. یا غفورو یا غفورو, کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر, پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے یا بازو میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجیے, انشاء اللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملیں گی. اگر مگر اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب یا غفور لکھیں گے تو اس کے جو فا ہے اس کے اندر واو ہے تو اس کا جو منہ ہوگا وہ کھلا رہے گا, اس کا منہ بند نہیں ہونا چاہیے, تو یہ اس کا منہ کھلا رہے اور اس انداز سے اس کو لکھا جائے. اسی طرح سے بخار کا ایک اور علاج گرمی کے بخار کا روحانی علاج, یہ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ مغالیہ نے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 25 پر تحریر فرمایا. گرمی کے بخار کا روحانی علاج, گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم 47 بار 47 مرتبہ لکھ یا لکھوا کر, پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے, انشاء اللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. اس کے اندر بھی یہی احتیاط ہے کہ اس کے اندر قاف ہے, واو اور میم, اس کے جو یہ تین جو حرف ہیں حروف ہیں تین, تو اس کا بھی جو منہ ہے وہ کھلا رہے. اگر منہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کا منہ بند ہوگا تو پھر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہو جائے گا, تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ایک اور بخار کا آسان علاج, اسی رسالے کے صفحہ نمبر 25 پر یہ موجود ہے, بخار کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ. یہ بہت ہی آسان ہے, لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پلائیے, انشاء اللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے مدت علاج تا حصول شفا. اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہا 2 مرتبہ ہے, لا الہ اور پھر اس کے بعد الا اللہ, تو ان دونوں میں بھی ہم نے یہی خیال کرنا ہے کہ اس کے جو منہ ہے ہا کا اور ہا کا یہ کھلا رہے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اسی طرح سے جو بخار کے مریض ہیں وہ چاہیں تو تعویذات عطاریہ, کہ ہمارے بے شمار مساجد میں جگہ با جگہ بستے لگتے ہیں, تو وہاں پر جیسے جا کر جو ہے وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بخار کے حوالے سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں, باندھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں, گلے میں پہننے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے پینے کے تعویذات بھی ہوتے ہیں, تو جو بھی تعویذات وہاں سے دیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی استعمال کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں.
اچھا, اس میں ٹائفائڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس میں ایک تو
احتیاطی تدابیر,
ہاں احتیاطی تدابیر ایک تو یہی ہے کہ جب پانی وغیرہ آپ جو ہے اچھی طرح ابال کے بوائل کر کے وہ پئیں, دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیں, تیسرا جو ہے بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد
انجا کے بعد
انجا کے بعد اچھی طریقے سے ہاتھ کا واش کر لیں, بہت ضروری ہے اس کا وہ. اور چوتھی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی کٹی ہوئی سبزیاں یا پھل وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال نہ کریں, اسپیشلی جو بازار میں بازار سے جو آتے, کیونکہ ان کے اوپر ذرا جراثیم ہونے کے بڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ہم نے عرض کیا پہلے بھی کہ اس میں جو چھلکے والے فروٹ ہوتے ہیں ان کا آپ استعمال کریں, جیسے کیلا وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کریں. دوسرا جو دوا اس کی جو ہوتی ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو بیمار ہو گیا تو جو اس کا جو دوا کا کورس ہوتا ہے
वो जरूर पूरा करे, बहुत जरूरी है वो। उमूमी तौर पर होता है कि जब दवा इस्तेमाल करते हैं तो इसका बुखार तकरीबन 48 से 72 घंटे में खत्म हो जाता है,
बेहतर
हो जाता है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती।
यानी जरासीम जिस्म के अंदर मौजूद रहता है,
के अंदर
सिम्टम थोड़े कम होना शुरू होते हैं।
बिल्कुल, तो उमूमी तौर पर होता है कि जब बुखार खत्म हो जाता है तो हम दवा लेना छोड़ देते हैं, लेकिन इसका जो उस वक्त तक आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, एहतियातें करनी चाहिए, जब तक आपके 3 ब्लड सैंपल्स या आपके स्टूल के सैंपल्स जो हैं वो आपके जरासीम से नेगेटिव नहीं आ जाते।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर एक दफा टाइफाइड हो गया, हमने इलाज पूरा नहीं करवाया, तो क्या ये जरासीम जिस्म में रह जाता है ना?
बिल्कुल रह जाता है, अगर इलाज, मैंने वही अर्ज किया ना कि इस वक्त तक आपने इसका ट्रीटमेंट लेना है जितना इसको डॉक्टर अर्ज करता है। बाज़ औक़ात 15 दिन भी देते हैं, बाज़ औक़ात 20 दिन भी देते हैं, बाज़ औक़ात अच्छी अगर कोई हाई एंटीबायोटिक्स होती हैं इस किस्म की जो जल्दी कवर कर लेते हैं, ड्यूरेशन कम भी होता है, लेकिन आखिरी फाइनल डिसीजन जो है ना वो टेस्ट से ही होता है कि
अगर जैसे हमने पहले टेस्ट करवाया उसमें सेल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव मिला, इसका मतलब हमें टाइफाइड हो गया। अब इसका डॉक्टर ने जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट किया है वो इलाज शुरू हो गया
जी।
अब इस इलाज के बाद एक टेस्ट रिपीट होगा, उसमें ये चेक किया जाएगा कि ये जरासीम जिस्म में मौजूद है या नहीं
जी।
अगर वो रिजल्ट नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये है कि वो जरासीम जिस्म से खत्म हो गया।
लेकिन ये है कि रिपीटेडली आपको करवाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 महीने तक।
अच्छा, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो उसका अगर ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है और सेल्मोनेला इन्फेक्शन जो जरासीम में जिस्म में रह जाता है तो ये कैरियर स्टेट में चले जाते हैं, वो जो बंदा मुतासर होता है वो उस इन जरासीम को अपने जिस्म के अंदर कैरी करे हुआ होता है, उसके जिस्म में रहता है वो, तो उसके बाद वो एक आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, क्रोनिक आर्थराइटिस ये कर देता है।
वो तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन
तभी डेवलप होती है जब ट्रीटमेंट नहीं करवाया, वो कैरियर स्टेट में चलेगा, 4 साल 5 साल बाद जाके ये जोड़ों को भी मुतासर करने लग जाता है। तो आपकी भी गुफ्तगू से यही समझ में आ रहा है कि इसका इलाज बर वक्त करा लिया जाए, टेस्ट पहले करा लिया जाए और इसके बाद भी डॉक्टर से फॉलोअप करके इसका टेस्ट दोबारा करा के चेकअप।
अब मसला प्रॉब्लम ही यही आती है सलमान भाई कि हमारे यहाँ फॉलोअप नहीं होता सही तरीके से, डॉक्टर्स को फॉलो नहीं करते हैं। डॉक्टर्स को अगर फॉलोअप करेंगे तो आपको फायदा होगा उसके अंदर। उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि आपने वही अर्ज किया था कि अलामत खत्म होती हैं, आपका खत्म हो जाता है, कनेक्शन डॉक्टर से खत्म हो जाता है, तो आप डॉक्टर को फॉलो करें। जब वो आपको मना कर देता है कि नहीं अब हाजत नहीं है दवा की, अब हाजत नहीं है दोबारा आने की, या फिर वो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद विजिट के लिए फिर भी बुलाता है आपसे, दोबारा दिखाएं आप आके, उसके रीजंस होती हैं।
ओके,
उसकी वजह होती है, उसको आके चेक करना होता है कि ये रिग्रेस तो नहीं कर रहा है, दोबारा तो नहीं डेवलप होने के चांसेस हो रहे हैं, अगर वो ग्रीन सिग्नल दे देता है फिर आप नहीं है।
इसमें टाइफाइड में उमूमन जिगर का साइज भी बढ़ जाता है, तिल्ली का साइज भी बढ़ जाता है।
जी जी बिल्कुल,
तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा फिर तवज्जो देनी पड़ेगी कि ट्रीटमेंट करने के बाद आपको रिपीटेड टेस्ट कराने हैं, फॉलोअप करना है डॉक्टर से।
बिल्कुल फॉलोअप करना है। देखें, अगर एक कंट्री ऐसी है जहां पे इस बीमारी के बारे में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं देते, उनके फिजिशियंस डॉक्टर्स उनको क्लियरेंस नहीं देते जब तक उनको जॉब पे नहीं रखते।
तो डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा होता है ना कि जो इन्फेक्ट हो गया वो कैरियर हो गया, यानी उसमें वो जरासीम मौजूद है, अब वो जरासीम इसके फुजला के जरिए पानी में भी जाएगा, ये फैलाता फिरेगा जरासीम।
बिल्कुल
ऐसा ही होता है,
बिल्कुल यही वजह होती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो वो हाथ धो के और इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर आप इस्तेमाल करें, उससे ये है कि आप काफी हद तक इस चीज से बच सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी आपके बेसिक रूल्स हैं उसको आपने फॉलो करना है, उससे इंशाल्लाह सजल बच सकते हैं। अब जो हम बात करते हैं कि मौसम गर्मा के अंदर जो, बल्कि हर मौसम में ही अल्लाह सजल हमारे लिए हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना फ्रूट्स पैदा करते हैं। अब उसके अंदर अब गर्मी के सीजन में उमूमी तौर पे हमारे जिस्म को पानी की बहुत ज्यादा
नमकियात की कमी
हो जाती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, लेकिन आप ये देखेंगे जितने भी फ्रूट इस सीजन में आते हैं वो पानी वाले ही फ्रूट होते हैं।
अच्छा,
खरबूज की मिसाल ले लें आप, खरबूजे की मिसाल ले लें आप, और आम की मिसाल ले लें आप, वो भी अगर एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर ठीक ठाक लिक्विड टाइप की चीज होती है। तरबूज तो खैर अब उसके ऊपर तकरीबन 90% तो पानी होता है, 91.5% उसके अंदर
पानी होता है
वो तो है ही पानी। अब उसके ऊपर अगर हम बात करते चलेंगे तरबूज कितना हमारे लिए सेहत के लिए फायदेमंद
है, सही है।
अगर इस पे
अमीर अहले सुन्नत ने कुछ मंदी फूल अता फरमाए थे।
तरबूज में बहुत सारे फायदे, इसमें तरबूज के जरिए अगर बूढ़ा आदमी भी तरबूज पाबंदी से खाए ना तो उसका दिल जवान हो जाए। मैं दिल के लिए इसके फवाइद अतिबा बयान करते हैं, तो हो सके तो तरबूज खाए। अच्छा तरबूज हो लाल हो, इसका देखने का तरीका ये कि ऊपर से गहरा सब्ज और इसको यूं बजाएंगे ना तो वो अंदर से आवाज जो है ना वो भुरभुरी सी आएगी। अगर यूं टनाटन आवाज आए तो समझो भी है आपको नहीं खाना, इन्हें कि वो कच्चा निकलेगा, सही सुर्ख नहीं होगा। और अगर यूं तक 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 इसी बत्ती सी आवाज आएगी ना तो वो अच्छा है, सब्ज होता ही है, अंदर से लाल होता है, मीठा मीठा। खाली पेट में तरबूज खा लिया जाए ना तो हदीस पाक के मुताबिक ये पेट को धो देता है, वो खाली पेट। अच्छा तो तरबूज जो है ना ये 2 घंटे में हजम होता है, ये देख लें। पानी इसमें बहुत है, देखिए तरबूज अच्छी मिकदार में खा ले तो पानी की खपत भी पूरी करेगा, बड़ी बरकत है इसमें, अल्लाह की नियमत है। गर्मियों में तो सबको तरबूज खाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें खाकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए, और इबादत में कुव्वत हासिल करने के लिए इनके जरिए में सेहत अच्छी होगी तो मुझे इबादत में कुव्वत हासिल होगी, ये नियत करके खाए, हज़्ज़े नफ्स के लिए लज्जत के लिए नहीं, तो आखिरत का हिसाब है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
डॉक्टर साहब जैसे अभी इसमें अमीर अहले सुन्नत ने हमें तवज्जो दिलाई तरबूज के ऊपर, तवज्जो दिलाई किसके फायदों के ऊपर, अभी जैसे अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि बूढ़ा आदमी भी खाए तो उसके दिल में जमा हो जाएगा, इसके हवाले से मैं कुछ मालूम देख रहा था तो मेरे नजर से गुजरा था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अप्रूव किया हुआ है कि डेली फ्रूट जो कि तरबूज है इसका इस्तेमाल करें। इस तरबूज के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक सिट्रोलिन होता है, दूसरा आर्जिनिन होता है। ये 2 वो चीजें हैं जो खून की नालियों के अंदर जो चर्बी जमा हो जाती है उसको निकाल देती है और दिल के अंदर जो है ना ताकत पैदा कर देती है। दूसरी बात यह है कि ये तरबूज के अंदर जो सिट्रोलिन आर्जिनिन केमिकल मौजूद होता है ये ब्लड प्रेशर के जो मरीज है उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट भी करता है और दिल के पंप करने की सलाहियत है ना उसको भी मजबूत कर देता है।
बिल्कुल सही बताया आपने कि इससे हमको जहाँ बहुत सारे फायदे होते हैं वहाँ दिल की जो बीमारियां हैं उनसे भी हमें बहुत ज्यादा बचत होती है। खाली एक दिल की बीमारी नहीं सलमान भाई, इसके अंदर आप अगर गौर करें तो इसके अंदर आपके तमाम जो सिस्टमिक एरिया
जी
उन सब पे फायदा होता
है। इवन कि मैं भी इसमें दे पढ़ रहा था कि जो एक खास किस्म का कैंसर जो कि हुदूद का प्रोस्टेट का कैंसर है उसके अंदर तरबूज का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, वो रिसर्च बेस्ड है
बिल्कुल।
और इस इवन अमीर सुन्नत ने एक मदनी फूल में ये भी बयान फरमाया था कि पथरी जिन लोगों को हो जाती है मसाने के अंदर उसमें भी ये रिलीफ करता है
बिल्कुल।
तो उसका इफेक्ट ये था कि तरबूज खाने से इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, विटामिन ई मौजूद होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से होता है कि जिस्म में जहां कहीं भी सोजिश हुई भी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इसको बोलते हैं, जिस्म में जहां भी सोजिश है अंदर है मेदे के अंदर है ये क्या कहते हैं मसाने के अंदर है तमाम इस जगह की सोजिश को ये तरबूज के जरिए इस्तेमाल के जरिए इसकी केमिकल के जरिए ये सोजिश खत्म हो जाती है। इवन इसके बाद जो एस्थमा चूंकि तरबूज वेरी रिच सोर्स होता है विटामिन सी का
जी,
वो पेशेंट जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं अगर इसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एस्थमा में भी इसके रिजल्ट इम्प्रूव्ड हैं।
अच्छे रिजल्ट मतलब सांस की बीमारी
जिनको बलगम आ जाता है दमा। तीसरा था जैसे अमीर सुन्नत ने अभी बयान फरमाया कि खाली पेट तरबूज खा लें तो क्या फायदा, तरबूज में कमोबेश 100 ग्राम में 1 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर वो चीज है जो पेट में जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हुआ होता है वो कब्ज को तोड़ देता है। फाइबर बहुत सारे जो पेट के कोलोनिक कैंसर यानी बड़ी आंत के जो कैंसर है उससे भी बचाव के लिए बहुत फायदेमंद है और ये तरबूज में ही मौजूद है।
हमारे साथ कॉल्स हैं, कुछ कॉल्स ले लेते हैं। कॉल दीजिएगा सर।
मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मैं कोरंग एक नंबर से बात कर रहा हूँ। मुझे बुखार रहता है और टांगों में दर्द रहता है, हर महीने का ये होता है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں رحیم یار خان سے عبد الوحید بات کر رہا ہوں۔ میں جتنی ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہوں اتنا ہی میرے پیٹ کے اندر درد مروڑ رہتی ہے، برائے مہربانی مجھے کا علاج بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ سوال دیجیے۔
محمد امیر خان کھانے والی، میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہوں جی، تو تربوز شوگر کے لیے کتنا اچھا ہے جی، ذرا یہ تو بتا دینا۔
انشاءاللہ سر جی۔ سلمان بھائی، تربوز شوگر کے حوالے سے کچھ کرنے بھول؟
ڈاکٹر، شوگر کے جو مریض ہیں وہ اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی شوگر کا لیول کتنا ہے،
ٹھیک ہے؟
وہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے پہلے شوگر کا لیول، جن کو شوگر ڈائگنوزڈ ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد پھر جس فروٹ کا استعمال کرنا چاہیں، تربوز ہی نہیں کوئی بھی فروٹ ہو، اپنے کنسرن ڈاکٹر سے شوگر کا لیول مانیٹر کروا لیں۔ کچھ لوگوں کو شوگر کنٹرولڈ بھی ہوتی ہے، کچھ کی ہائر 200 بھی ہوتی ہے، 300 سائڈ کو بھی ٹچ کر رہی ہوتی ہے، تو آل اٹ ڈیپینڈ کہ شوگر لیول اس وقت آپ کا کیا چل رہا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جیسے فروٹ کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے پوچھا ہے تربوز کا، تو اگر کہیں سے شوگر کے چارٹ مل جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اگر وہ آپ کو مل جائیں تو وہ ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں، اس میں ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ہری لائن ہوتی ہے، ایک پیلی لائن ہوتی ہے اور ایک لال لائن ہوتی ہے۔ لال والی لائن کے اندر جتنے بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سختی کے ساتھ آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ جو پیلی لائن ہوتی ہے، پیلی لائن کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ آپ احتیاطی طور پہ تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے، اور جو گرین پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو تربوز جو ہے وہ بیسیکلی پیلی لائن پہ آتا ہے تو آپ احتیاطی طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سے مشورے کے بعد۔
ڈاکٹر صاحب، اس میں ڈیٹیل دیکھ رہا تھا کہ تربوز کا پازیٹیو افیکٹ ہے شوگر کنٹرول کرنے۔
ایگزیکٹلی،
وہ پیشنٹ جسے کوئی ینگ پیشنٹ ہے، ڈائگنوز نہیں ہے، ڈائبٹک ڈائگنوز نہیں ہے، تو وہ اگر استعمال کرے تو اس میں شوگر میں پازیٹیو ریزلٹ ہے، کنٹرول کرتا ہے۔
اچھا،
اس کے ساتھ اس کے تربوز کے کھانے کے ساتھ اس کے بیج بھی ہوتے ہیں، اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اس سوالات لے لیتے ہیں، اس کے بعد
سوالات پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے جو کال کی تھی کہ ان کو بخار رہتا ہے اور عموماً ٹانگوں میں درد رہتا ہے، اب اس میں انہوں نے بخار کی کیفیت کا نہیں بتایا کہ بخار کس کیفیت کا آتا ہے اور کتنے کیف سے آتا ہے ان کو، آیا لگاتار ان کو بخار رہتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے بعد بخار کھا لیا، 15 دن کے بعد بخار ہو گیا۔ تو ان کو مشورہ یہی ہے کہ جو اچھے ان کے فزیشین ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کسی لوکل ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، کسی اچھے فزیشین کو چیک اپ کروا لیں تاکہ ایک تھورولی ان کا چیک اپ ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسی وقت اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو دیکھ لیا جائے، اگر ان کو لگاتار بخار رہتا ہے تو
صحیح،
ٹھیک ہے نا۔ اگر لگاتار نہیں رہتا ہے، 4-5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد بخار ہوتا ہے، تو پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اپنی ہیبٹس کو دیکھیں۔
ڈاکٹر صاحب، یہ سے پتا کیسے چلے گا مریض کو کہ مجھے بخار ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں، اکثر لوگ خود ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ مجھے بخار ہوا ہوا ہے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنی جنرل کیفیت سے ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ان کو بخار ہوا ہوا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے یا گری گری طبیعت ہو رہی ہے، تو یہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں، بخار ہونے لگ جاتا ہے۔ عمومی طور پہ اگر ہلکا سا نزلہ بھی ہوتا ہے آدمی کو تو جسم اسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر فیل ہونے لگ جاتا ہے، بخار محسوس ہونے لگ جاتا ہے، لیکن اگر چیک کیا جاتا ہے تھرمامیٹر میں نہیں ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے پاس کلینک میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو بخار ہو رہا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا بخار،
جی
اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو اس کو فیلنگس ایسی آ رہی ہوتی ہے، جسم کا جو اسکن ہے وہ تھوڑی سی ہاٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، جو یہ تلوے یہ اپنا
گرمی
ہیں، یہ تھوڑی سی ہیٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو گرمائش محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اوور آل باڈی کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، جو ایک اتھینٹک چیز ہوتی ہے تھرمامیٹر، اس سے اگر چیک کرتے ہیں تو وہ ہمیں نارمل شو کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک وہ چیز ہمیں उसका टेम्परेचर शो नहीं करेगी तो हम उसको नहीं।
सब क्या घर में थर्मोमीटर रखना चाहिए बिलखसूस बच्चों के लिए भी और ओल्ड एज पेशेंट के लिए?
देखिये बिल्कुल रखने चाहिए थर्मामीटर, लेकिन उसकी एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली थर्मामीटर होता है शीशे का और उसके अंदर होता है पारा, अगर खुदा ना खास्ता गिर गया तो वो जख्मी भी कर सकता है, पारा भी नुकसान दे सकता है।
लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस से बेहतर है कि किसी चीज से डायग्नोसिस बना ली जाए।
अब जैसे ये थर्मामीटर है ना, अगर हम इस किस्म के थर्मामीटर को इस्तेमाल करते हैं तो अब ये जो एरिया है ये एरिया है पारा,
सही
ठीक है ना, इसके अंदर पारा होता है मरकरी, और मरकरी को अगर हम लेते हैं तो एक तरह से ये पॉइजनस होता है, जहर होता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने इसको इस्तेमाल कर लिया या किसी ने ले लिया तो उसको जान को खतरा हो सकता है।
सही,
तो अगर ये जो चीज है टूट जाती है तो ये आपको जख्मी भी कर सकती है, तो इसकी एहतियात बहुत जरूरी है। बेहतर है घर में रखें तो इसका कैप आता है, कैप लगा
एहतियातों के साथ
इस्तेमाल करें, और अगर बच्चों में ना इस्तेमाल करें, बच्चों में ये है कि फिर वो चबा सकते हैं इसको, खुदा ना खास्ता मुंह जख्मी कर सकते हैं। बच्चों के लिए होता है कि स्ट्रिप्स आती है,
अच्छा
पट्टियां आती हैं, वो आराम से मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है, तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बेसिकली कलर चेंज होते हैं, वो जब आप रखेंगे बॉडी के ऊपर तो आप वो पट्टियों में एक रंग तब्दील होते हुए नजर आएंगे,
उससे पता चल जाएगा,
उससे आपको उस पर नंबर भी डाले होते हैं, 98 होता है, 98, 99।
बच्चों में अक्सर बड़े मिस डायग्नोसिस होती है कि वालदा को या वालिद को हाथ लगा के पता चल जाता है कि बुखार हो रहा है, क्या ये सही है डायग्नोसिस?
देखें बात ये होती है कि बच्चों का बॉडी टेम्परेचर तो वैसे ही थोड़ा बहुत ज्यादा होता है,
सही,
आम आदमी से आम दूसरों से एज के हिसाब से थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन बात वही होती है कि बच्चों को जब जुकाम होता है या नजला होता है तो एक आम आदमी का जैसे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हीटअप करता है तो ऐसे उनका भी करता है, उनमें भी वही स्टैंडर्ड यूज किया जाता है कि थर्मामीटर शो करता है, अगर थर्मामीटर शो करेगा तो टेम्परेचर, अगर नहीं करेगा तो नहीं है टेम्परेचर। अच्छा दूसरा जो एक इस्लामी भाई की कॉल आई थी हमारे पास, उन्होंने कहा था कि ठंडी चीजें खाने से पेट में दर्द हो जाता है। अब ये ठंडी चीजें खाने से पेट में दर्द, क्या पेट में पूरे पेट में दर्द होता है?
सही
सवाल ये है, या उनके सिर्फ मेदे में तकलीफ होती है?
अब मेरे जो गुमान में मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया शायद मेदे में इनके दर्द होता
होती है। अब ये खाली ठंडी चीजें खाने से होती है या कोई और चीजें भी खाने से होती है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ठंडी चीजों का ही नाम लिया है, तो ऐसी ठंडी खाली चीजें खाने से मेदे में तकलीफ होना ये कुछ अजीब सी चीज लगती है। इसके अंदर बेहतर ये है कि फिजिशियन से रजू कर ले, थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री देंगे ये, तो इंशाल्लाह इनका मर्द ऐसा मुझे नजर नहीं आता है कि जिससे इनको परेशानी हो सके। खलील भाई इसमें पेट में दर्द जो होता है इसके हवाले से अगर कुछ आप मदनी फूल दे दें।
जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो यही है कि हर शख्स को अपना एक अंदाजा होता है कि क्या खाने के बाद उसे क्या तकलीफ होती है, तो अगर ये महसूस करते हैं कि फुला फुला चीज खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होता है तो इनको चाहिए कि उससे एहतियात करें, पहला हल तो यही है। फिर मजीद ये कि शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहु मौला आलिया की किताब घरेलू इलाज के सफहा नंबर 78 पर बद हजमी के हवाले से इलाज आपने इरशाद फरमाया है, तो इंशाल्लाह वो अर्ज करते हैं। फिर मजीद ये भी कि अगर ये कुछ खाएं तो उसे अच्छी तरह अगर चबा कर खाएंगे
सही,
तो इससे भी हो सकता है कि इनके पेट में जो दर्द होता है उसमें फर्क पड़ जाए। जिस शख्स को बदहजमी की शिकायत हो और वो नीचे दी हुई इन दो आयात करीमा को पढ़कर अपने हाथ पर दम करके उसे पेट पर फेरे और खाने वगैरह पर दम करके खाना खाया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बदहजमी की शिकायत दूर हो जाएगी। आयत मुबारका ये है, कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तअमलून इन्ना कذلك نجزي المحسنين। ये पारा नंबर 29 सूरतुल मुरसलात की आयत नंबर 43 और 44 है। तो अगर ये जो अमल है अगर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फायदा होगा। इसी तरह से मजीद आसान इलाज ये है कि 9 मरतबा या अजीमो पढ़कर जो है वो दम कर ले पेट पर, इंशाल्लाह जरूर उससे भी फायदा हो।
अच्छा इसमें सलमान भाई हम तरबूज के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे कि तरबूज की अगर किसी आंखों पे बिनाई के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है?
ये बहुत ज्यादा रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, विटामिन ए का जो रोल है वो आंखों के जो रेटिना होता है जिसके ऊपर इमेज बनता है उसके अंदर ये बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। विटामिन ए जब कमी हो जाती है तो उसमें नजर भी थोड़ी कम होने लग जाती है।
ठीक है। अच्छा इसमें एक और इसका क्या, तरबूज खाने से वजन कम हो सकता है?
इस तरबूज खाने से वजन कम हो सकता है क्योंकि तरबूज के अंदर भी फैट होता है, लेकिन इसके अंदर एक खास किस्म का फैट होता है जिसको बोलते हैं गुड फैट, जो कि जिस्म के अंदर से चर्बी को खत्म कर रहा होता है और इसी तरह उसको ल्यूकोपीन बोलते हैं। बेसिकली ल्यूकोपीन होता है जो कि खून की नाली के अंदर अगर चर्बी जमा हो गई है वो उस चर्बी को भी निकाल देता है, और खून की नाली में से अगर चर्बी निकल गई तो वो जैसे दो सिलसिलों में से, इससे पहले के जो सिलसिलों में हमने किया था एंजाइना एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर भी रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा। हार्ट दिल की बीमारियों के अंदर इसका बहुत अच्छा फायदा है, चर्बी का गुड फैट इसके अंदर मौजूद होता है, चर्बी जिस्म से कम करता है।
इसके हवाले से जो है वो शेख तरीके का मेरा सुन्नत दामद बरकात मुआलिया ने यही तरबूज के हवाले से घरेलू इलाज के सफा नंबर 79 पर जो है कुछ इस तरह का इरशाद फरमाया कि जब तरबूज खाते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर छिड़कते हैं, कोई काला नमक छिड़क लेता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो इसके हवाले से आपने इरशाद फरमाया कि हाजमे का मन भाता इलाज, तो हाजमा भी हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल। वो ये है, आप फरमाते हैं कि काली मिर्च, काला जीरा और नमक, काली मिर्च, काला जीरा और नमक बारीक पीस कर एक बोतल में महफूज कर लीजिए, तरबूज पर छिड़क कर इस्तेमाल कीजिए, इस तरह तरबूज की लज्जत में भी इजाफा हो जाएगा और वो हाजमे की बेहतरीन दवा साबित होगा और भूख भी चमक उठेगी।
मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि तरबूज जो अल्लाह अज़्ज़ोजल ने गर्मी में हम लोगों के लिए पैदा किया है उसके ऊपर गौर करें तो मेडिकली तौर पे कितने फायदे हैं। बहुत फायदे, मतलब आपके पूरे जिस्म के तमाम आज़ा के ऊपर उसका असर होता है और उससे फायदा ही होता है,
लेकिन बीजों का भी कोई फायदा हो रहा होता है।
देखिए अब ये तो कोई चीज मतलब बेफायदा तो है ही नहीं ना,
अल्लाह ताला ने
अल्लाह अज़्ज़ोजल ने अगर कोई चीज दी है इंसान के लिए तो फायदा है बीजों का भी डेफिनेट।
तरबूज के बीज के बारे में देख रहा था, ये वो बीज है जो एडिबल यानी इसको खा सकते हैं,
बिल्कुल खा सकते हैं
और ये हाई सोर्स होता है प्रोटीन का।
अच्छा इसमें हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे वो अगर हमें दिखा दें तरबूज के हवाले से, उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर जो है
बीज वाली जो स्लाइड्स हैं ये दिखा सकते हैं।
ये इसके अंदर कैलोरीज जो हैं 154 ग्राम के ऊपर
जी
तकरीबन आधा पाव के अंदर 46 कैलोरीज इसके अंदर मिलती हैं, और इसके अंदर जो है ना फैट जो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट से क्या इसमें सलमान भाई मुराद?
सैचुरेटेड फैट वो फैट वो अमूमन जो ना जम जाता है
यानी नुकसान दे
फैट
वो होता है 0%।
वो देखें तरबूज के अंदर दिखा रहा है 0%। वो है
कोलेस्ट्रॉल कितना है इसमें, वो है 0%। सोडियम जो हमारे जिस्म में यानी कि नमक जो है वो 2 मिलीग्राम इसमें मौजूद है।
अब 2 mg की कंसेंट्रेशन वो है कि जो पसीना निकल जाता है,
एग्जैक्ट
पसीने में सोडियम लूज हो जाता है बॉडी से, तो अगर तरबूज का इस्तेमाल हो रहा होगा तो ये सोडियम बॉडी में वापस आ जाएगा।
बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर इसमें नजर आती हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोडियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चीजें हैं। अब इसके अंदर जो बीज होते हैं इसके अंदर भी कैलोरीज होती हैं, अब वो हम इंशाल्लाह से जल आपको दिखाते हैं। ये देखें इसके अंदर अगर हम आपको बीज होते हैं ये तकरीबन
बीज के भी अपने फायदे हैं,
बीज के फायदे हैं इसमें बीज के लिए हैं वो कितने ग्राम
सर उसी सर्विंग के हिसाब से
एक ओंस बीज के अंदर जो है 158 कैलोरीज है, यानी कि अच्छी खासी कैलोरीज है,
ताकत है यानी
और ठीक ठाक ताकत है इसके अंदर, और इसके अंदर फैट जो है वो आपके 21% है, इसमें सैचुरेटेड फैट 14% है और सोडियम सलमान में कितना है देखिए
सोडियम है 1%। अब डॉक्टर साहब ये देखें जो तरबूज का जो गूदा है उसमें 2% है और जो बीज है उसमें 1% है, यानी बीज और गूदा मिला के खाएंगे तो 3% सोडियम, वो पानी जो आपका बॉडी से लूज हो गया फुल तरबूज मील खाने से, ये सारे
रिप्लेनिश हो जाएगी, बॉडी में वापस आ जाएगी। इसके अंदर भी एक और चीज लिखी हुई थी, स्लाइड दोबारा लगा दीजिए जरा। फाइबर भी है, अब जैसे बीजों के अंदर इसमें लिखा हुआ है 30% विटामिन ए होता है, फाइबर का रिचेस्ट सोर्स है ये। इसके अलावा बीज के अंदर जो मौजूद रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन डॉक्टर साहब आपको पता है कि किस लिए चाहिए होता है, मसल्स मास बिल्डिंग के लिए। जितने भी लोग बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, कमजोरी जिनको भी होती है, तो ये बीज जो होता है हाई सोर्स होता है प्रोटीन का। और ये प्रोटीन जाके जिस्म में मसल का मास बहुत बना रहे होते हैं, ताकत बहुत अता कर रहे होते हैं।
तो बीज तो बहुत फायदेमंद है, उसको इस्तेमाल कैसे करें?
जिस तरीके से आप तरबूज खा रहे हैं उसी के साथ बीज को आप खा सकते हैं,
चबा के खा लें,
एडिबल यानी इसको चबा के आप खा सकते हैं, लेकिन चबाना जरूरी है इसको।
अच्छा, चबाना जरूरी
है, बगैर चबाए खाएंगे तो फिर बदहजमी हो जाएगी, जिसे खलील भाई ने भी बताया था।
अच्छा,
तो अगर आपको बहुत ताकत देते हैं
जी सर,
इसके जो बीज होते हैं,
इसके बीज के अंदर होता है ग्लूटामिक एसिड। वो ग्लूटामिक एसिड बेसिकली वो एसिड है जो अक्सर जो मेडिसिन है दिमाग की, उस एसिड को कंट्रोल करती है। और ये ग्लूटामिक एसिड नेचुरली मौजूद है तरबूज के अंदर। ये अगर जिस दिमाग में चले जाएगा, वो पेशेंट को नींद का मसला होता है, एंग्जाइटी का मसला होता है, डिप्रेशन का मसला होता है, एक होती है मोशन सिकनेस, उसका मसला होता है, उसमें ग्लूटामिक एसिड का बहुत पॉजिटिव रोल है। जैसे भी मैंने आपको शुरू में भी बताया ट्रिप्टोफैन, ये ज्यादा डिप्रेशन वगैरह के जो मरीज हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है।
मतलब अब जितना तरबूज पे आप बात करते जा रहे हैं, तो उससे तो मतलब ये लग रहा है कि
आपको तरबूज ज्यादा खाना चाहिए।
मतलब इसके अंदर फायदे ही फायदे हैं,
मतलब उसमें फायदे हैं। शायद सुना था अमीर अल सुन्नत ने फरमाया था कि सहरी के अंदर भी अगर तरबूज का इस्तेमाल कर लें,
बिल्कुल,
तो मुझे ये फिर उससे ये समझ में आया कि चूंकि तरबूज के अंदर होता है फाइबर
होता है,
वो फाइबर जो होता है जल्दी हजम
नहीं होता,
तो वो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है रोजे की हालत में, पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, और भूख की जो कैफियत अगर पैदा हो गई वो भी इम्प्रूव करेगा। फिर दूसरा जो कमजोरी आपको पैदा हो जाती है रोजे की हालत में, उसमें भी बेहतरी पैदा कर सकता है, ऐसा डॉक्टर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वो तरबूज इस्तेमाल करते हैं फाइबर
शहरी
में इस्तेमाल करते हैं
इंशाल्लाह,
तो आपको जो भूख जो है आपका उसका, क्योंकि इसका अमल जो है हजम होने का वो स्लो होगा
जी,
तो भूख की जो कैफियत आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद लगती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा,
वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगा,
वो बढ़ जाएगा आपका, तो आपको भूख इतनी जल्दी नहीं लगेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, तो इबादत में दिल लगेगा इंशाल्लाह,
रोजे में
की कैफियत जो कैफियत पैदा हो जाती है, गुनूदगी की कैफियत पैदा हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी।
अक्सर अमूमन लोगों को वीकनेस हो जाती है जोहर के बाद, बिल कमजोरी महसूस होने लग जाती है,
वही भूख की कैफियत की है।
हमारे पास टाइफाइड का घरेलू इलाज भी था
जी,
जो कि अर्ज करना था। टाइफाइड का घरेलू इलाज, इसमें जो है वो 4 चीजें हैं। सबसे पहले खाक सीर, इसकी मकदार जो लेनी होगी वो तकरीबन 6 ग्राम। इसी तरह से दूसरी चीज जो इसमें शामिल है वो इस इलाज में, वो है अबरेशम
फूड पॉइजनिंग की,
इसकी मकदार भी जो है तकरीबन 6 ग्राम। और तीसरी चीज जो इसमें है वो है उनाब, इसकी जो मकदार होगी इसमें तकरीबन 5 दाने। और चौथी चीज जो इसमें शामिल है वो है मुनक्का, तो इसके भी 5 दाने। खाकसीर 6 ग्राम, अबरेशम 6 ग्राम, उनाब 5 दाने और मुनक्का भी 5 दाने। तरीका, चारों दवाएं 1 गिलास में पानी में डालकर उबालें और अच्छी तरह जोश आ जाने के बाद इसे छान लें। नोट, अबरेशम को उबालने से पहले दरमियान से काटकर अंदर से जो मवाद निकले उसे फेंक दें, यानी कि ये जो अबरेशम है इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको पहले बीच से या कहीं से भी काट लीजिए, छुरी वगैरह से या कैंची से, तो इसके अंदर से जो मवाद वगैरह निकलेगा उसे फेंक दें, फिर इसके बाद इसको जो है ना उबालने के लिए रखा जाए। मिकदार खुराक, दिन में 3 से 4 मरतबा थोड़ा थोड़ा इसे पी लें। साथ ही खमीरा मरवारीद सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाएं। दूसरे रोज नया जोशांदा बनाएं, یعنی کہ ایک دن جو بنائے وہ اس کو دوسرے دن استعمال نہ کریں بلکہ ایک ہی دن میں اس کو استعمال کر لیجئے. مدت علاج تا حصول شفا 3 تا 15 دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ عزوجل مکمل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے فوائد ٹائفائڈ ملیریا اور دیگر بخاروں میں انشاءاللہ عزوجل بہت مفید ہے. تو یہ بہت ہی آسان علاج ہے ٹائفائڈ میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ اس سے انشاءاللہ فائدہ.
پچھلے سلسلے میں سلمان بھائی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی فوڈ پوائزننگ کے اوپر, اگر تھوڑا سا فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتا دیں آپ, بیسیکلی فوڈ پوائزننگ کیا ہوتی ہے اور کن کن چیزوں میں کی بیکٹیریا کس قسم کے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے وہ اگر تھوڑا سا بریفلی بتا دیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, فوڈ پوائزننگ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا کھانا, اکثر کھانا جو پوری طریقے سے پکا ہوا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ایک یا وہ کنٹامینیٹڈ ہے یعنی اس میں کوئی جراثیم کی آمیزش ہو گئی جس میں جراثیم مل گئے, یا بازار کا کھانا آپ نے کھا لیا, اس طرح کے کھانے کھانے سے کچھ قسم کے جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنے سائن سمٹم دیتے ہیں, ان کے اپنے اپنے الگ الگ سائن سمٹم ہیں, وہ جراثیم کی تعداد بھی کافی ہے گی. تو عموماً اکثر یہ جو فوڈ پوائزنگ جو اکثر ہمیں کلینکس وغیرہ میں ملتی ہے, کچھ کھانا کھایا, عموماً اکثر یہ جو ملتی ہے وہ باہر بازار کا کھانا کھایا, کھانا کھانے کے وقت پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے, الٹی ہو رہی ہوتی ہے یا موشن ہو جاتے ہیں, اکثر یہ کو بخار بھی ہو جاتا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. یہ ایک خاص پریزنٹیشن ہے فوڈ پوائزنگ کی, لیکن اس سے بھی بیونڈ ایک فوڈ پوائزنگ کی کنڈیشن ہے جو ٹاپ 10 چیزیں ایسی تھیں جیسے میں نے نکال رہا تھا کہ اکثر جو بازار کے اندر جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور گھر پہ آ کے بغیر دھوئے استعمال کر دیا تھا, نمبر 1 کاز ہیں جو آپ کے کھانے میں فوڈ پوائزنگ کر دیتی ہیں. اس کے اوپر میں جو سلاد کا جو استعمال کیا جاتا ہے, مولی گاجر وغیرہ, اکثر لوگ صحیح طریقے سے نہیں دھوتے, یہ فوڈ پوائزنگ کا سبب بنتی ہے.
اچھا اس میں تھوڑا سا میں یہ جو سبزیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو بڑا انہائیجینک قسم کا پانی جو
جی
ہوتا ہے ڈالا جاتا ہے,
یہ نمبر 1 کاز ہے جو میں نے ریسرچ کی تھی, جو میں نے معلومات پڑھی, اس میں رپورٹڈ کیسز بھی ہیں, مور دین 50,000 رپورٹڈ کیس ہیں پر منتھ, یعنی اس کا کیس کی ہسٹری سے پتہ یہ لگا, وہ لوگ جو سیلڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, گاجر وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں, بازاروں میں ہوٹل پہ جو کھاتے ہیں وہ عموماً ہائیجینک نہیں ہوتی ہیں, نمبر 1 کاز یہ بنتا ہے. اس کا سیکنڈ کاز جو ہے وہ کچے انڈوں کا استعمال, اکثر لوگ طاقت عموماً اسی لیے کھاتے ہیں کہ کچا انڈا کھائیں تو طاقت آئے گی, اسی کیریئر ہوتا ہے بیسیکلی سیلمونیلا, جیسے بھی ٹائیفائڈ کا آپ ذکر کر رہے تھے, کچے انڈے کے اندر سیلمونیلا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو کہ ٹائیفائڈ بھی کر سکتا ہے. کچے انڈے سیکنڈ نمبر پہ ہے جو کہ فوڈ پوائزنگ کر دیتا ہے, تیسرے نمبر پہ مچھلی, چوتھے نمبر پہ جیسے آلو ہیں, آلو کا کنسپٹ نہیں ہے کہ ان کو دھو کے استعمال کیا جائے, یہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے, آلو چپس فارم میں بھی استعمال ہوتے ہیں, کچھ لوگ آلو چھلکے کے ساتھ بھی ڈال دیتے ہیں بغیر دھوئے, تو یہ چوتھے نمبر کے اوپر بن گیا. پانچواں ہے چیز کا استعمال, چھٹا ہے آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گا آئس کریم. آئس کریم کس طریقے سے آپ کی فوڈ پوائزنگ, اکثر تو فوڈ پوائزنگ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں کھائیں, لیکن دیگر چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی فوڈ پوائزنگ کر رہے ہوتے ہیں. آئس کریم کے اندر جو ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے اندر ایک ہوتا ہے گلین بار سنڈروم, جی بی ایس کہلاتا ہے, وہ پیرالیسس کر دیتا ہے بچوں کے اندر.
اچھا اس میں ابھی جو آپ نے فرمایا تھا کہ کچے انڈا لوگ طاقت کے لیے استعمال,
یہ اکثر میرے تجربے میں آیا,
مطلب کیا واقعی اس کچے انڈے میں اتنی طاقت ہوتی ہے
ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو کچا انڈا میرے جو معلومات میں ہے کہ ویسے بھی کھا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہاف کوک یعنی آدھا کچا آدھا پکا ہوا انڈا کھانا بھی پسند کرتے ہیں.
نہیں وہ تو ٹیسٹ کے لیے ہو گیا نا,
تو اگر
یہ ریکمینڈیڈ لیول دیکھتے ہیں,
یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے,
یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, مطلب
فوڈ گائیڈ لائن کے حساب سے یہ ریکمینڈیڈ.
کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کھائیں,
کوشش ہی کرنی چاہیے کہ کچا انڈا نہ کھائیں, کیونکہ سیلمونیلا یعنی ٹائیفائڈ کا کیریئر ہوتا ہے, یعنی اس میں جراثیم ہوتا ہے.
نہیں ایک تو وہ ذہن بنا کے کھاتے ہیں کہ جی ہم طاقت آ جائے گی, ہمارے اندر بہت زیادہ طاقت آ جائے گی, تو کیا اتنی طاقت آ جاتی ہے اگر ہم اس کو بوائل کر کے کھا لیں, ابال کے کھا لیں, یا پھر یہ کہ اس کو پکا کے کھا لیں, تو اس میں زیادہ طاقت نہیں آئے گی؟
جراثیم کم از کم تو مر جائیں گے, طاقت تو جتنی ہے اتنی رہے گی.
مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارا سلسلہ اختتام کو پہنچا, आज जो हमने बात की गर्मी के हवाले से, कुछ टाइफाइड के हवाले से बात की, और सबसे आपको यकीनन जो आज हमने तरबूज के ऊपर, अल्लाह की एक नेमत के ऊपर हमने बात की कि उस एक नेमत के अंदर इतने इंसान के लिए फवायद उसमें मौजूद हैं, सिर्फ गौर फिकर करने की जरूरत है। अल्लाह अज़्ज़ोजल हमको गौर फिकर करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो है बीमार सेहत के तालिब उन पे फरमा करम रब गालिब, तुझसे रहम करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मैं